एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ मतलब कागज पर लिखी एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास की धड़कन है।
एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को जगाया,
उन्हें बोलना सिखाया और कह सकते हैं कि क्रांतियों की मशाल थमा दी।
हम बात कर रहे हैं मैक्सिम गॉर्की के कालजयी उपन्यास माँ की,
और ये किताब आज भी उतनी जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बड़े बदलाव तो बड़े बड़े नेता या विचारक ही लाते हैं,
हाँ,
लेकिन ये उपन्यास हमें एक साधारण अनपढ़ डरी सहमी औरत की आंखों से दिखाता है कि क्रांति की असली चिंगारी कहां सुलगती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना है, उस मनोवैज्ञानिक सफर को खोजना है जहां एक इंसान का निजी दुख उसका प्रेम पूरी इंसानियत की लड़ाई बन जाता है।
तो शुरुआत कहां से करें?
चलिए शुरू करते हैं लेखक और उसके दौर से। मैक्सिम गोर्की का असली नाम तो कुछ और था, एलेक्सी पेशकोव। उन्होंने अपना उपनाम गोर्की रखा जिसका मतलब होता है कड़वा।
ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है ना?
हाँ।
ये उनके जीवन का सार है। उन्होंने जो कड़वाहट बचपन से झेली, गरीबी, अनाथ होना, मतलब तरह तरह के काम करना, वही उनकी लेखनी में उतर आई।
तो वो किसी बंद कमरे में बैठकर कल्पना से नहीं लिख रहे थे?
बिल्कुल नहीं, वो उस रूसी समाज की नस नस से वाकिफ थे जिसके बारे में वो लिख रहे थे, खासकर वो मजदूर वर्ग जिसे उस दौर का साहित्य लगभग अनदेखा कर रहा था।
और उपन्यास हमें सीधे उसी दुनिया के बीचों बीच फेंक देता है। 1905 की रूसी क्रांति अभी अभी नाकाम हुई है, जार का शासन अपने जुल्म के इंतहा पर है, और औद्योगिक कस्बों का माहौल, उसकी आप एक तस्वीर खींच सकते हैं, वो दुनिया दिखती कैसी थी।
सोचिए एक ऐसी जगह जहां आसमान हमेशा धुएं और फैक्ट्रियों की कालिख से स्लेटी रहता है
हर वक्त,
हाँ, जहां दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद मर्द घर आकर अपनी सारी हताशा अपनी पत्नियों पर निकालते हैं।
शराब पीना ही एकमात्र सहारा लगता है।
एक अंधेरे कुएं जैसी जिंदगी,
बिल्कुल,
जिसमें लोग बिना किसी उम्मीद के गिरते चले जा रहे हैं। इसी माहौल में हमारी कहानी की नायिका पेलागिया निलोवना वस्योवा सांस ले रही हैं।
तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत से जो खुद उस दमनकारी व्यवस्था का एक
जीता जागता प्रतीक है।
हाँ बिल्कुल, अपने पति के हाथों पिटती हुई, दुनिया से डरी हुई, और शायद ये मानने वाली कि यही उसकी नियति है।
सही कहा, पति की मौत के बाद भी उसे कोई आजादी महसूस नहीं होती, बल्कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है।
वह समझ नहीं आता कि अब क्या करे,
क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व उसी घुटन भरी दुनिया तक सीमित था।
हाँ।
लेकिन इसी खालीपन में एक नए बीज को पनपने की जगह मिलती है, और वो बीज है उसका बेटा पावेल।
पावेल जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने से साफ इनकार कर देता है, वो शराब और मारपीट के रास्ते को छोड़कर किताबों की दुनिया में चला जाता है।
एक माँ के लिए तो ये खुशी की बात होनी चाहिए थी,
लेकिन पेलागिया के लिए ये एक नया डर लेकर आता है।
क्यों?
क्योंकि वो किताबें आम किताबें नहीं थी, वो प्रतिबंधित किताबें थी, समाजवादी विचारों की किताबें। जब पावेल घर पर अपने दोस्तों के साथ गुप्त बैठ के करने लगता है, तो माँ को लगता है कि उसका बेटा किसी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है,
अपराधियों की संगत में पड़ गया है।
हाँ, उसे हर वक्त पुलिस के छापे का डर सताता है। वो पावेल से कहती भी है, ये सब तुम्हें जेल पहुंचा देगा। ये समझना आज के दौर में शायद थोड़ा मुश्किल हो, एक माँ अपने बेटे को पढ़ने लिखने से रोक रही है, लेकिन ये सिर्फ एक माँ बेटे का झगड़ा नहीं है, ये दो पीढ़ियों का, दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है।
बिल्कुल, एक दुनिया जो कहती है चुपचाप सहते रहो, यही किस्मत है,
और दूसरी दुनिया जो पावेल की है, वो कहती है नहीं, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे।
और माँ का डर, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। वो दरवाजे के पीछे छिपकर उन लड़कों की बातें सुनती है।
अच्छा।
वो मजदूरों के हक, बराबरी और एक बेहतर भविष्य की बातें करते हैं। उनकी बातों में उसे नफरत नहीं बल्कि गहरी इंसानियत और सच्चाई नजर आती है।
और खासकर पावेल का दोस्त आंद्रेई, जिसे द लिटिल रशियन कहते हैं, उसके सौम्य स्वभाव का भी माँ पर बहुत असर पड़ता है।
बहुत गहरा असर। वो महसूस करती है कि ये लड़के अपराधी नहीं बल्कि नेक दिल इंसान हैं जो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं।
तो ये सिर्फ एक वैचारिक बदलाव नहीं था, ये एक भावनात्मक जुड़ाव था। वो उन लड़कों में अपने बेटे का अक्स देखती है, और फिर उन सब में इंसानियत का।
और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है, दलदल का कोपेक वाली घटना।
हाँ, ये क्या था?
फैक्ट्री का मालिक मजदूरों की तनख्वाह से एक एक कोपेक मतलब एक छोटा सिक्का काटने का ऐलान करता है। वजह ये बताई जाती है कि इससे फैक्ट्री के पास वाले दलदल को सुखाया जाएगा।
लेकिन मजदूर जानते हैं कि दलदल सूखने का फायदा सिर्फ मालिक को होगा,
उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी कटौती उस शोषण का प्रतीक बन जाती है जो वो सालों से झेल रहे थे।
एक कोपेक सुनने में कितना मामूली लगता है, लेकिन कभी कभी जुल्म की इंतहा एक छोटी सी बात से ही हो जाती है। तो पावेल और उसके दोस्त क्या फैसला करते हैं?
वो इसका विरोध करने के लिए पर्चे छापने का फैसला करते हैं ताकि सारे मजदूरों को इस अन्याय के बारे में पता चले। वो घर पर पर्चे छाप ही रहे होते हैं कि
पुलिस आ जाती है।
हाँ, पुलिस तलाशी लेने आ जाती है। अब यहाँ एक असाधारण मतलब बहुत ही कमाल का दृश्य है। माँ जो अब तक इन सब चीजों से खौफ खाती थी, एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती।
वो क्या करती है?
वो सारे अवैध पर्चे उठाकर अपनी स्कर्ट के नीचे छिपा लेती है और पुलिस के सामने एक भोली भाली सीधी साधी औरत होने का नाटक करती है।
कमाल है, ये उसका पहला सक्रिय क्रांतिकारी काम था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उस वक्त वो समाजवाद या क्रांति के बारे में सोच रही थी, या ये सिर्फ एक माँ की
अपने बेटे को बचाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी?
हाँ,
मेरे ख्याल से ये दोनों का एक अद्भुत मिश्रण था। शुरुआत निश्चित रूप से एक माँ के प्यार से हुई। उसका पहला मकसद अपने बेटे पावेल को बचाना था।
लेकिन उन पर्चों को छिपाते हुए वो सिर्फ पावेल को नहीं बल्कि उसके विचारों को, उसकी पूरी लड़ाई को बचा रही थी।
बिल्कुल, उस एक पल में उसका व्यक्तिगत डर एक सामूहिक उद्देश्य के लिए साहस में बदल गया। वो अब सिर्फ पावेल की माँ नहीं रही, वो उस विचार की रक्षक बन गई।
और यहीं से उसके किरदार का एक नया अध्याय शुरू होता है। वो अब सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है।
हाँ, और इस घटना के बाद जब मई दिवस के जुलूस की तैयारी होती है तो उसका किरदार और भी मजबूत हो जाता है।
इधर सत्ता को चुनौती देना था।
और वो लाल झंडा कौन सिलता है? खुद माँ। वो उसे सिलते हुए डर भी रही है और गर्व भी महसूस कर रही है।
वो जानती है कि ये झंडा उसके बेटे को मौत के मुंह में ले जा सकता है।
लेकिन वो ये भी समझ चुकी है कि ये झंडा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि लाखों मजदूरों की उम्मीदों और बलिदान का प्रतीक है।
और फिर जुलूस का दिन आता है। पावेल गर्व से वो झंडा लेकर सबसे आगे चलता है। वो जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा।
और वही होता है, सैनिकों का क्रूर दमन, मारपीट और फिर पावेल और आंद्रे समेत कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी। एक तरह से देखें तो ये उनकी हार थी।
हाँ, ऊपर से देखने पर तो ये हार ही लगती है।
लेकिन यहीं से उपन्यास का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, जिसे हम माँ का मिशन कह सकते हैं। पावेल के जेल जाने के बाद माँ टूटती नहीं बल्कि उसकी असली ताकत अब सामने आती है।
अब मंच पूरी तरह से उसका है, उसे ये नई भूमिका मिलती कैसे?
अविल के साथ ही ये महसूस करते हैं कि एक सीधी साधी बूढ़ी औरत पर कोई शक नहीं करेगा।
अच्छा,
वो शहर से दूर गांव में आसानी से जा सकती है और प्रतिबंधित साहित्य और अखबार पहुंचा सकती है, और माँ इस जिम्मेदारी को पूरी हिम्मत से स्वीकार कर लेती है।
अब वो पेलागिया नहीं बल्कि पूरे आंदोलन की माँ बन जाती है।
ये उसके रूपांतरण का शिखर है। एक औरत जो अपने घर की दहलीज पार करने से डरती थी, अब वो पूरे देश में क्रांति का संदेश फैला रही है।
इन यात्राओं में वो कैसे कैसे लोगों से मिलती है?
वो हर तरह के लोगों से मिलती है। दबे कुचले अंधविश्वासी किसानों से जो बदलाव के नाम से ही डरते हैं, निराश बुद्धिजीवियों से जो सब कुछ जानते हैं पर कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
और दूसरे गुप्त क्रांतिकारियों से भी मिलती होगी?
हाँ, जिनमें उसे अपने बेटे जैसे ही जज्बे वाले नौजवान मिलते हैं। इन मुलाकातों से उसकी दुनिया और बड़ी हो जाती है। वो अब सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं बल्कि हर शोषित इंसान के लिए लड़ रही है।
एक बात जो इस उपन्यास में बहुत दिलचस्प है वो है धर्म का इस्तेमाल। गोर्की जो खुद नास्तिक थे, उन्होंने समाजवाद को एक नए धर्म की तरह पेश किया है।
हाँ, ये बहुत मार्मिक है। क्रांतिकारी बाइबल की तरह अपनी किताबें पढ़ते हैं, उनकी बैठकें शुरुआती ईसाइयों की गुप्त सभाओं जैसी लगती हैं, और पावेल तो खुद एक मसीहा या शहीद जैसा लगता है।
तो माँ का क्या? क्या वो अपनी पुरानी धार्मिक आस्था को छोड़ देती है?
छोड़ती नहीं बल्कि उसे एक नया ज्यादा गहरा अर्थ दे देती है। वो देखती है कि चर्च के पादरी तो अमीरों और जार का ही साथ देते
और गरीबों के दुख पर सिर्फ सब्र करने का उपदेश देते।
बिल्कुल, जबकि ये नौजवान, ये समाजवादी ईसा मसीह की तरह ही इंसानों से प्यार करने और उनके लिए त्याग करने की बात करते हैं, तो उसकी आस्था ईश्वर से हटकर इंसानियत में लग जाती है।
वो कहती भी है कि ईश्वर लोगों के दिलों में होता है।
हाँ, उसके लिए समाजवाद ही सच्चा धर्म बन जाता है।
और फिर कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, अदालत का दृश्य। ये कोई आम मुकदमा नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये एक दिखावटी मुकदमा है जिसका मकसद ही क्रांतिकारियों को सजा देकर बाकी लोगों में खौफ पैदा करना है।
लेकिन पावल और उसके साथ ही अदालत को ही अपना मंच बना लेते हैं।
पावल अपना बचाव करने की जगह एक भाषण देता है।
हाँ, एक ऐसा भाषण जो इतिहास में दर्ज हो जाता है।
वो क्या कहता है अपने भाषण में?
वो जाजिया वकीलों से बात नहीं करता, वो सीधे इतिहास से बात करता है। वो जारशाही, पूंजीवाद और चर्च के पाखंड पर जबरदस्त हमला बोलता है।
वो कहता है कि हम मजदूर ही हैं जो दुनिया की सारी दौलत पैदा करते हैं,
लेकिन हमें ही जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है।
और वो ऐलान करता है कि ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी। इतिहास की असली ताकत मजदूर है और आखिरी जीत उन्हीं की होगी।
और इसका अंजाम क्या होता है?
जैसा कि पहले से तय था, पावल और उसके साथियों को साइबेरिया में निर्वासन की सजा सुनाई जाती है। लेकिन माँ अदालत में रोती नहीं है, उसके आंसू गर्व के हैं।
वो अपने बेटे के बलिदान को स्वीकार करती है।
हाँ, उसे लगता है कि उसके बेटे ने अपना फर्ज पूरा किया।
कहानियां खत्म हो सकती थीं, हाँ। लेकिन गॉर्की हमें उपन्यास का सबसे शक्तिशाली और शायद दिल दहला देने वाला अंत देते हैं।
हाँ।
माँ को पावल के उस ऐतिहासिक भाषण की छपी हुई प्रतियां मिलती हैं। वो ठान लेती है कि अपने बेटे की आवाज को, उसके शब्दों को वो लोगों तक पहुंचा कर रहेगी।
वो उन पर्चों को लेकर एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और लोगों में बांटने लगती है।
लेकिन एक जासूस उसे पहचान लेता है और पुलिस उसे घेर लेती है।
और वो आखिरी दृश्य,
वो दृश्य भुलाए नहीं भूलता। पुलिस वाले उसे बेरहमी से पीटते हैं, उसका गला घोंटते हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक चिल्लाती रहती है, लोगों को सच बताती रहती है, एक नई दुनिया की उम्मीद जगाती रहती है।
वो चीखती है, डरो मत, सच को कोई डुबो नहीं सकता।
और आखिरकार उसकी आवाज खामोश हो जाती है, लेकिन उसका साहस हमेशा के लिए अमर हो जाता है। एक व्यक्ति के तौर पर माँ की कहानी का अंत बहुत दुखद है, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर यह शायद सबसे आशावादी अंध है। उसका बलिदान बेकार नहीं जाता।
सही कहा।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश क्या है?
मेरे लिए सबसे बड़ा संदेश चेतना का जागरण है। ये कि बदलाव सिर्फ बौद्धिक नहीं होता, वो एक भावनात्मक और नैतिक सफर है, और इसकी शुरुआत डर पर काबू पाने से होती है।
और ये भी कि प्रेम, खासकर मातृत्व का प्रेम, जब अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ता है तो वो एक अजेय क्रांतिकारी शक्ति बन सकता है।
माँ का प्यार सिर्फ पावल के लिए नहीं रह जाता, वो पूरी मेंशाइट को अपने आंचल में समेट लेता है।
आखिर में ये उपन्यास हमें सिखाता है कि बड़े बदलावों की उम्मीद किसी मसीहा से नहीं करनी चाहिए।
वो बीज हम सब के अंदर, साधारण लोगों के दिलों में ही छिपा होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है।
और शायद इसीलिए 100 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी मैक्सिम गोर्की की माँ आज भी दुनिया भर के संघर्ष करने वालों को रास्ता दिखाती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।